21 जनवरी दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। मैसिडोनिया नाम को लेकर ग्रीस में झड़पें, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान में एक घटना ने पुलिस और मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया।
आपको याद होगा वो यही कहते थे कि हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, हम दोनों से अलग रह करके और दोनों का विरोध करते हुए राजनीति में आए हैं।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो नेताओं सहित 3 लोगों की हत्या, कानून व्यवस्था कटघरे में।
जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है हत्याओं का दौर शुरू हो गया, अपराधियों के हौसले बुलंद है, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी मैसेडोनिया के साथ सरकार की डील का विरोध कर रहे हैं। डील के तहत ग्रीस के उत्तर में स्थित पड़ोसी का नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया किया जा रहा है। दंगा विरोधी सुरक्षा बलों ने धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के साथ कई घंटों तक झड़पें हुई। इसमें कम से कम सुरक्षा बलों के 25 जवान घायल हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के इतने गोले छोड़े कि इसकी गंध तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से महसूस की जा सकती थी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगावा सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अपने विदेशी दौरों में कटौती कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता जिम्बाब्वे में शांति और स्थिरता लाना है। मनंगावा को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना था, जिसका मकसद बुरे आर्थिक दौर से जूझ रहे जिम्बाब्वे में निवेश लाना था, लेकिन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जिम्बाब्वे में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीबीसी के साथ बातचीत में जिम्बाब्वे की सूचना मंत्री मोनिका मुसवांगवा ने प्रशासन का बचाव किया। उन्होंने कहा, सरकार इस मामले में ठीक वैसे ही निपटी है जैसे उपद्रवियों से निपटा जाता है। प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। संविधान किसी भी शिकायत पर प्रदर्शन या विरोध की इजाज़त देता है, पर यह शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। ये थे जिम्बाब्वे की सूचना मंत्री मोनिका मुसवांगवा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी यूनियन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा टाल दिया है। यहाँ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल विवादित राष्ट्रपति चुनावों का हल निकालने की कोशिशें कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कल कहा था कि चुनावों के परिणामों को लेकर संशय बरकरार है। इस अफ्रीकी देश के शीर्ष न्यायालय ने फेलिक्स तसेकेदी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, जिसे लेकर विपक्षी दल नाराज हैं। विपक्षी नेता मार्टिन फाइलू ने अपनी जीत का दावा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इन चुनावों को मान्यता न दें। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने अफगान चरमपंथियों से निपटने के पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। इस्लामाबाद दौरे में ग्राहम ने पाकिस्तान के अफगान सीमा पर तारबंदी के काम का उल्लेख किया और कहा कि चरमपंथियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने कई अभियान छेड़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ग्राहम का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका और तालिबान शांति प्रक्रिया पर जल्द बातचीत कर सकते हैं। ग्राहम ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उससे उन्हें उम्मीद बंधी है। ग्राहम ने कहा,
The narrative back home is that Pakistan says one thing and they do another.
अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर ये अवधारणा है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, और ये उसका दोगलापन है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ चीज़ों को बदला हुआ देखा है, और वो भी सकारात्मक दिशा में। प्रधानमंत्री इमरान खान को बदलाव के नायक के रूप में देखता हूँ। ये थे अमरीकी सांसद लिंडसे ग्राहम के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी माली में कल इस्लामिक चरमपंथियों के संदिग्ध हमले में शांति सेना के 10 सैनिकों की मौत हुई है और कम से कम 25 सैनिक घायल हुए हैं। जो सैनिक मारे गए हैं वे चाड़ के थे और इस्लामिक चरमपंथियों के हमले का जवाब दे रहे थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, दिन की पहली सभा। मेरा नाम है संदीप सोनी और आप हमें रेडियो के साथ साथ इस समय bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं लाइव। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार के विरोध में एक बहुत बड़ी रैली हुई है। ये वो लोग हैं जो मैसिडोनिया के साथ सरकार की डील का विरोध कर रहे हैं। ये वो डील है जिसके जरिए ग्रीस के उत्तरी पड़ोसी का नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया किया जा रहा है। हालांकि इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन पुरजोर विरोध हो रहा है इसका। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं नवीन नेगी।
ग्रीस में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता पांव पसारने लगी है। राजधानी एथेंस में संसद के बाहर धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए और कई मर्तबा उनका गुस्सा हिंसा में भी बदल गया। प्रदर्शनकारी मैसेडोनिया के साथ ग्रीस की सरकार के समझौते का विरोध कर रहे हैं। समझौते के तहत ग्रीस के पड़ोसी का नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मैसेडोनिया ग्रीस का हिस्सा है। मास्क लगाए प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। आयोजकों का दावा है कि रविवार की रैली में 6 लाख से अधिक लोग शामिल थे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मेरा मानना है कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है और इसलिए हम यहाँ हैं। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा, लोग इस समझौते को नहीं चाहते, इस देश का नाम मैसेडोनिया ही क्यों नहीं रहने देते। एक और प्रदर्शनकारी पानोस ने कहा, मेरा मानना है कि ये मैसेडोनिया के राष्ट्रीय मुद्दे के लिए ये आखिरी विरोध है। मेरा मानना है कि ग्रीस के लोगों को आखिरी लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, ये आखिरी उम्मीद है। ग्रीस की वामपंथी सरकार के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने पिछले साल मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री जोरान जाएव के साथ ये डील की थी। हालांकि अभी इस समझौते को ग्रीस की संसद में मंजूरी नहीं मिली है। इस डील पर इसी हफ्ते ग्रीस की संसद में मतदान होना है। ये विवाद काफी पुराना है। जब साल 1991 में युगोस्लाविया विभाजित हो गया था, मैसेडोनिया युगोस्लाव गणराज्य का हिस्सा था और जब ये आजाद हुआ तो इसने मैसेडोनिया नाम अपनाया। मैसेडोनिया का नाम ग्रीस के कई लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा है और उनका कहना है कि इसमें राष्ट्रहित की अनदेखी की गई है। ग्रीस की विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री सिप्रास ने डील में मैसेडोनिया को कई छूट दी है। सिप्रास की सरकार पिछले हफ्ते ही विश्वास मत के इम्तिहान में बाल बाल बची है, जब उसके गठबंधन के एक सहयोगी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। कुछ सांसदों ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए मौत की धमकी तक मिली है। ऐसे में सिप्रास के लिए मैसेडोनिया का नाम बदलने का दांव परेशानी का सबब बन सकता है।
मैसेडोनिया नाम को लेकर ग्रीस में झड़पें, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, ब्यौरा दे रहे थे नवीन नेगी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 2 दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद पुलिस और मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये मामला, बता रहे हैं कराची से वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्ला खान अपनी साप्ताहिक डायरी में।
2 रोज पहले पाकिस्तानी पंजाब के शहर साहिवाल के करीब हाईवे पे एक गाड़ी में सवार 7 में से 4 यानी माँ बाप बेटी और गाड़ी ड्राइव करने वाला फैमिली फ्रेंड पुलिस ने आतंकवादी होने के शुबे में गिरफ्तार करने की बजाय दुहाई देने के बावजूद मार डाला। सरकार ने जैसा कि रिवाज है तुरंत एक जांच कमेटी बना दी। अब एक और रिपोर्ट आएगी, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड होंगे और चंद दिनों में ये मामला भी ऐसे पिछले कई मामलों की तरह इधर उधर हो जाएगा। मगर ऐसे मौके पे मीडिया खोज लगाने की होड़ में जिस बुरी तरह से एक्सपोज होता है वो भी किसी एनकाउंटर से कम नहीं। इस खानदान का एक 10 साला बच्चा और उसकी 2 छोटी बहनें मरने से बच गए, मगर मीडिया इन जिंदा लाशों को भी भंबोड़ने से बाज नहीं आया। इन बच्चों के बड़े और समझदार रिश्तेदारों की बजाय बच्चों से पूछा जा रहा था कि आपके मम्मी पापा कैसे मरे, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, मम्मी पापा और बहन में से कौन ज़्यादा याद आता है। 4-5 वर्ष की 2 छोटी-छोटी बच्चियां अस्पताल की इमरजेंसी में बेंच पे गुम सुम बैठी थीं। उनमें से एक का हाथ गोली छू जाने से जख्मी हो गया था। एक रिपोर्टर उसके हाथ पे बंधी पट्टी छू के कह रहा था, नहीं बेटा घबराने की कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। قریب ہی اسٹریچر پہ ان بچیوں کا 10-11 ورش کا گھائل بھائی درد کے مارے رو رہا تھا اور پترکار کے روپ میں ایک بغیر دماغ کا روبوٹ اس سے پوچھ رہا تھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ کے ممی پاپا کو جن لوگوں نے مارا وہ پولیس والے تھے یا کوئی اور لوگ؟ اور وہ معصوم روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ کس نے کیسے مارا۔ لو جی، اس رپورٹر کا کام تو ہو گیا، اس کے پاس سب سے الگ فوٹیج آ گیا۔ اب یہ بچے مریں یا جئیں اس کی بلا سے، اس کے چینل کو تو ٹی آر پی مل ہی جائے گی۔ یہ ہٹا تو کوئی اور مائک لے کے آ گیا، وہ ہٹا تو کوئی اور، اور سب ایک ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں جیسے ایک ساتھ بہت سے گرد اس شو کو اپنی تیز چونچوں سے پھاڑتے ہیں کہ جس میں ابھی کچھ جان باقی ہے۔ یہ مائکروفون نہیں، میڈیا کے گدھوں کے تیز پنجے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ڈاکٹر یا نرس یا کوئی گارڈ روکے تو یہ خبر تیار کہ میڈیا کے ساتھ اسپتال والوں کی بدتمیزی، میڈیا کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کوئی مائی کا لال ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تم کام کر رہے ہو یا اپنی پیشہ ورانہ شیلتا کا کام اتار رہے ہو۔ اور میڈیا کا کیا رونا روئیں، یہاں تو ہمارے دگج نیتا بھی نہیں جانتے کہ دکھ بانٹنا تو رہا، ایک طرف دکھ محسوس کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بھوتپور پردھان منتری کا ویڈیو فوٹیج یاد آ رہا ہے جو بلاتکار کی شکار ایک مہیلا سے ہمدردی جتانے بیسیوں گاڑیوں اور درجنوں کیمروں کے ساتھ اس مہیلا کے گاؤں پہنچے اور اس کے سر پہ بہت ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹی اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس وقت میں یہ سب لکھتے ہوئے کیسا محسوس کر رہا ہوں شاید نہ بتا سکوں۔ کاش میں ایسے لوگوں کے لیے وہ تمام برے الفاظ اور گالیاں بھی لکھ سکوں کہ جو اس وقت میرے من کو چھید رہے ہیں۔ یقین کیجئے، اس دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مہنگی اور نایاب ہے تو وہ سونا یا ہیرا نہیں، کامن سینس ہے۔
یہ تھے پاکستان سے ورشٹھ پترکار وسط اللہ خان۔
بی بی سی ہندی ریڈیو پر بدھوار کو دنیا جہاں،
انتراشٹری خبروں کے پیچھے کا سچ،
شکروار کو اتہاس کی پرتیں کھولتی ویویچنا،
اور شنیوار کو آپ کی آواز انڈیا بول۔
عام آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے رویوار کو پنجاب کے برنالہ میں ایک چناوی ریلی کی۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب میں آگامی لوک سبھا چناؤ اکیلے لڑنے کا اعلان کیا۔ عام آدمی پارٹی نے پنجاب کے علاوہ ہریانہ اور دلی کی سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی گھوشنا کی ہے۔ دلی میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ یوں تو گٹھ بندھن کی چرچا تھی، مگر عام آدمی پارٹی نے اکیلے ہی چناوی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکیلے چناؤ لڑنے کے پیچھے عام آدمی پارٹی کی کیا رڑنیتی ہے، اور کیا وہ پنجاب، ہریانہ اور دلی کے علاوہ انیہ جگہوں پر بھی چناؤ لڑ سکتی ہے؟ یہی سمجھنے کے لیے بی بی سی سنواد داتا آدرش راٹھوڑ نے ورشٹھ پترکار پرمود جوشی سے بات کی۔
دیکھیں، ایک تو جو دقت یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کو ایک سوتنتر پارٹی کے روپ میں ہی بنائے رکھنے کی کوشش تھی شروع سے ہی، اور اس پارٹی کی جو گھوشنا ہے شروع میں آپ کو یاد ہوگا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نہ کانگریس کے ساتھ ہیں نہ بی جے پی کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے سے الگ رہ کر کے اور دونوں کا ورودھ کرتے ہوئے راجنیتی میں آئے ہیں۔ اور شروع میں آپ نے دیکھا بھی تھا کہ 2013 کے دسمبر میں جب وہ سرکار میں ایک الپ سنکھیک سرکار کو بنانے کی گھوشنا کی تھی جب شیلا دیکشت نے، تو شاید ایک داؤں کھیلا تھا کہ یہ گر جائیں گے اپنے، لیکن اس سمے انہوں نے انشن پہ بیٹھ گئے اور تمام جو گتی ودھیاں ہوئی اس کے بعد وہ سرکار ہٹی۔ تو کیجریوال شروع کے دنوں میں تو اس سمے چونکہ کانگریس پارٹی کی سرکار تھی اس کے خلاف تھے، آج بی جے پی کی سرکار ہے تو اس کے خلاف بھی ہیں، تو کیجریوال ملتا ایک صاف ستھری نئی چھوی کے ساتھ آنا چاہتے تھے، یہ ان کی راجنیتی ہے، اور اس لیے مجبوری یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ دونوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیکن حال کے ورشوں میں، پچھلے 2-3 ورشوں میں کیجریوال نے جو ایک نیا روپ، یا ان کی جو عام آدمی پارٹی نے ایک نیا جو رخ اختیار کیا، وہ تھا بی جے پی کے خلاف جو سرکار کی راجنیتی بن رہی تھی اس میں وہ شامل ہوئے۔ تو جو آپ نے ابھی مہا گٹھ بندھن کی جو بات کہی اس میں تو وہ ہیں ہی، لیکن مہا گٹھ بندھن کے ساتھ کانگریس کا بھی ساتھ ہے، یہاں پر ان کا ایک انتر ورودھ پیدا ہوتا ہے۔
لیکن سر، پنجاب میں جو اس طرح سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ ہم سب سیٹوں پہ چناؤ لڑیں گے، لیکن دیکھیں تو سنگٹھن کیا ان کا کمزور نہیں ہوا ہے جس طرح سے بڑے نام ان سے الگ ہوتے رہے ہیں پنجاب میں؟
بالکل کمزور ہوا ہے۔ ابھی جیسے پھولکا جی نے چھوڑی ہے پارٹی، तो कोई कारण तो है ही फुलका जी। अब कह रहे हैं कि हमें राजनीति में पार्टी बनानी नहीं चाहिए थी, हमें तो स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाना चाहिए था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ऐसी, और आपने देखा पूरा पिछले 4-5 वर्षों में पंजाब से काफी बड़े शुरुआती जो नेता थे वो सब छोड़कर चले गए, और अभी वो एक खैरा जी के साथ चली रहा है उनका एक झगड़ा। और कल की जो रैली थी उसमें केजरीवाल जी ने एक बात और कही, वो बीजेपी और कांग्रेस वगैरह तो अलग है, उन्होंने कहा कि जो लोग जा रहे हैं वो अच्छी बात है, जो चले गए पिछले 1-1.5 साल में वो सब बेईमान लोग थे, अब हम ज्यादा साफ सुथरे और अच्छे लोग बचे हुए हैं, अब हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। यानी कि वो उन्होंने इसको स्वीकार तो किया है कि हमारे भीतर टकराव हुआ है, पार्टी टूटी है, नेता छोड़कर चले गए, लेकिन उनका यही कहना है कि वो जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये अगर आप केंद्रीय नेतृत्व के रूप में भी देखें तो आपने योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण या मतलब तमाम बड़े बड़े जो नाम थे उनके साथ वो छोड़कर चले गए, पंजाब में तो खैर हुआ ही ऐसा।
लेकिन क्या अब इस लोकसभा चुनाव में वो कहीं और राज्यों में भी अपने बड़े स्तर पे उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर सकती है?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी जो इनकी कार्यकारिणी कार्य परिषद और कार्यकारिणी की बैठकें हुई थी दिल्ली में, उसमें यही निश्चय किया है पार्टी ने कि हम अब उतना विस्तार नहीं फैलाएंगे, उतना ही करेंगे जितने को हम संभाल सकते हैं। ये अभी तक का इनका अनुभव ये रहा है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि हर जगह चुनाव में खड़े हो जाते हैं या हर जगह जाते हैं, लेकिन जो जमानत जब्त होने का भी इनका रिकॉर्ड रहता है, शायद उद्देश्य ये रहता है कि हमारी पहचान हो जाए, हमें वहां पर एक प्रकार की आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। जो आप देखिए 2014 के चुनाव के पहले, जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे उसके पहले, दक्षिण भारत में भी कई जगह पर बड़े अच्छे बैंकर, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सेना से जुड़े हुए पुराने लोग और ऐसे वकील, अध्यापक, डॉक्टर, तमाम तरह के लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, लेकिन अब वो चलन खत्म हो गया।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की हत्या ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में भाजपा के 2 नेताओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई है। विपक्षी भाजपा अब कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मान रही है। भोपाल से शुरू नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में रविवार को भाजपा नेता मनोज ठाकरे की हत्या कर दी गई। पिछले 4 दिनों में यह भाजपा के दूसरे नेता की हत्या है। बड़वानी जिले में रविवार को सुबह की सैर पर निकले भारतीय जनता पार्टी के बलबाड़ी मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या कर दी गई। उनके सिर पर पत्थर से प्रहार किया गया है। उनका शव खेत में मिला है। इस हत्या के चलते प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और सरकार कुछ भी कर पाने में असफल साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को चेतावनी दी है।
जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है वक्त बदलाव की बात करती थी, लेकिन ये कैसा बदलाव है। हत्याओं का दौर शुरू हो गया। इंदौर में हत्या, उसके बाद मंदसौर में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या, उसके बाद हमारे बड़वानी जिले के बलवाड़ी के मंडल अध्यक्ष की हत्या मनोज ठाकरे जी की। अपराधियों के हौसले बुलंद है। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि सरकार इन मामलों को बहुत सतही ले। मुझे इस हत्या के पीछे गहरा षड्यंत्र नजर आता है और इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि स्वर्गीय प्रहलाद बंदवार जी की हत्या की CBI जांच कराई जाए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, ऐसी घटनाओं को रोके, हत्याओं को रोके, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आना पड़ेगा।
वहीं सत्ता पक्ष का मानना है कि ठाकरे की हत्या में भी कोई करीबी व्यक्ति शामिल हो सकता है। मंदसौर में ऐसा ही हुआ था। मंदसौर जिले में गुरुवार की रात को नगर परिषद अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप BJP कार्यकर्ता मनीष बैरागी पर लगा। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया गया। राज्य के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने BJP नेताओं की हत्या को आपसी विवाद का प्रतिफल बताया है। उनका कहना है कि राज्य में 15 सालों में जो कुछ हुआ है उसी के चलते यह हो रहा है।
मंदसौर की घटना हुई तो बैरागी जिसने हत्या की वो भाजपा का नेता था। यहाँ जो फर्जी तरीके से एक टेलीफोन एक्सचेंज चलता था जिससे जो ISI जुड़ा होता, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जो एक सेक्स रैकेट पकड़ाया था उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो 15 सालों के अंदर इन्होंने जो कानून व्यवस्था की हालत कर दी है, ये तो ये हो गया कि 100-100 चूहे खाकर बिजली हज को चली।
इसके पहले एक हत्या इंदौर में भी हुई थी जिसमें अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ को सत्ता संभाले अभी एक ही माह पूरा हुआ है। 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई भाजपा अब लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त डावोस में हैं, लेकिन उनके ज्यादातर मंत्री यही मान रहे हैं कि इन नेताओं की हत्या के पीछे भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं। दिनेश उप्रेती तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप जी, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अखिल भारतीय जाट आरक्षण बचाओ महाआंदोलन के नेताओं ने कल कहा कि सरकार ने आरक्षण की उनकी मांग न मानकर उनके साथ धोखा किया है और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए जहां 10% आरक्षण 7 दिन में दे दिया गया, वहां उनकी मांग जो है वो यूपीए ने जो मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो जब चैलेंज किया गया इसको, तो सरकार ने जानबूझकर उनका पक्ष नहीं रखा।
तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ आंदोलित हो जाए ये मांग कर रहे हैं। जो
जाट नेताओं ने चेतावनी भी दी कि अगर कोटा देने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो आम चुनावों में जाट बीजेपी का विरोध करेंगे और मायावती को अपना समर्थन देंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, ये खबर कई अखबारों की सुर्खियों में है। खबर में कहा गया है कि सरकारी सेवाओं के लिए कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालयों, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों में प्रवेश के दौरान आरक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेगा।
और सीट बढ़ाई जा रही है ताकि आरक्षण के साथ ज़्यादा बच्चों को, छात्रों को जगह मिल सके, दाखिले दिए जा सकें।
जी, कुछ एक अखबारों में ये भी खबर है कि सरकार इसके लिए जल्दी ही जो नई सीटें दी जाएंगी उसके लिए फंड जो है जल्दी जारी करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस में एकजुटता की कोशिशों के बीच एक रिसॉर्ट में ठहरे 2 विधायकों में मारपीट हो गई। कांग्रेस विधायक जेएन गणेश और आनंद सिंह आपस में भिड़ गए, बाद में आनंद सिंह को अस्पताल में भर्ती कराना
पड़ा। कर्नाटक का घटनाक्रम कुछ ज़्यादा दिन चल गया, खिंच गया है, आपको नहीं लगता?
कुछ ज़्यादा ही चल गया है। बीजेपी जहाँ पहले यहाँ दिल्ली में और गुड़गांव में अपने विधायकों को लेके बैठी थी, वहीं जो है कांग्रेस भी अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटी हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक एक संसदीय पैनल नरेंद्र मोदी सरकार से नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर का अध्ययन करने के लिए कह सकता है। सरकार कई बार नोटबंदी और जीएसटी के अपने फैसलों का बचाव कर चुकी है और उसका तर्क है कि लंबे समय में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि वो पंजाब में
अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।
दिल्ली में आज से बारिश के आसार हैं,
हालांकि कल काफ़ी गर्मी लग रही थी।
लेकिन इस खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर छापा है। खबर के मुताबिक मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दोपहर बाद कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और रात तक ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। यह सिलसिला 26 जनवरी तक चलने का अनुमान है। इसके अलावा जनसत्ता में एक खबर है कि नीरव मोदी, जो पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला हुआ था उसमें बैंक के 2 कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश भाजपा के बलवाड़ी मंडल के अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या की खबर को भी जनसत्ता ने पहले पन्ने पर छापा है।
बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती, बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या सुर्खियां लगी हैं। और अब खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में कल पुरुष एकल वर्ग में तब बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब 6 बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर 4थे दौर में हारकर बाहर हो गए। फेडरर पिछले चैंपियन भी थे। तीसरी वरीयता हासिल फेडरर को 14वीं वरीयता हासिल ग्रीस के स्टेफानोस के हाथों 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल अपना मुकाबला आसानी से जीतने में कामयाब रहे। वैसे महिला एकल वर्ग में भी कल बड़ा उलटफेर हुआ जब साल 2016 के चैंपियन दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर गैर वरीयता हासिल अमेरिका की डैनियले कॉलिंस से 6-0, 6-2 से हार गई। लेकिन महिला एकल वर्ग में 8वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य के पेत्रा क्विटोवा ने अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को हराने में किसी परेशानी का सामना नहीं किया। कल ही रूस की मारिया शारापोवा का पत्ता भी साफ हो गया। उन्हें 15वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने 4-6, 6-1, 6-4 से हराया। और अब समीक्षा। ऑस्ट्रेलिया से उसी की जमीन पर पहली बार टेस्ट और एक दिवसीय सीरीज जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब पहुंच चुकी है न्यूजीलैंड में, और क्या विश्व कप से पहले ये उसकी सबसे कठिन परीक्षा है?
हाँ, आप उसको एक समझ लीजिए कि एक तरीके का कर्टन रिजर्व, क्योंकि जो प्लेइंग कंडीशंस न्यूजीलैंड में मिलेंगी उससे मिलती जुलती इंग्लैंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बॉल सीम होगा, स्विंग होगा। ऑस्ट्रेलिया बेशक हार गई पर उनके दो एक खिलाड़ी नहीं थे टीम में रेगुलर, पर न्यूजीलैंड के पास ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, उनकी बेस्ट टीम उतारने वाले हैं क्योंकि वो भी तो वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे हैं।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का, और घर में न्यूजीलैंड का ये हाल है कि उसने साल 2013-14 में भारत को पिछली 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 4-0 से हराया था। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज बुधवार से शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मैच नेपियर में खेला जाएगा। दूसरी तरफ भारत के कप्तान विराट कोहली पूरी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, खुद विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक और गेंदबाज कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने अपनी चमक दिखाई है।
सबने कंट्रीब्यूट किया, जो आई थिंक बहुत ही अच्छा साइन है वर्ल्ड कप में जाने से पहले, कि सब लोग डिफरेंट स्टेजेस पे कंट्रीब्यूट करेंगे तभी आप एक बड़ा टूर्नामेंट जीत सकते हैं।
अब न्यूजीलैंड की बात करें तो उसके बल्लेबाज एक से बढ़कर एक हैं, जो भारत के लिए मुश्किलें पेश करेंगे, इससे इनकार नहीं करते विजय लोकपल्ली।
बहुत सही आपने कहा, खास करके मैं कहूंगा कि बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, मार्टिन कपिल हैं, मनरो हैं, केन विलियमसन तो टॉप 3 खिलाड़ियों में उनको गिना जाता है, रॉस टेलर अपने एक्सपीरियंस पे ही खेल रहे हैं, आप देखिए कितनी अच्छी फॉर्म उन्होंने दिखाई है श्रीलंका के साथ, हेनरी निकल्स एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पर मेन रीजन ये है कि उनको अपनी कंडीशंस में बैटिंग करना आता है। जो कंडीशंस मिलेंगी भारतीय टीम को उससे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, पर ये कहना भी ठीक होगा कि भारत के पास भी बॉलर्स हैं।
वैसे अब गेंदबाज ही भारतीय टीम की जान है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, हालांकि वो जब तक क्रीज पर रहते हैं सांस भी हलक में अटकी रहती है, और वो थोड़ा और तेज खेलें तो सोने पर सुहागा, लेकिन उनका भार कम करने की जिम्मेदारी सलामी जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा पर भी है। शिखर धवन राहत महसूस करते हैं रोहित शर्मा के साथ।
रोहित के साथ बैटिंग करना अब तो इतने सालों से बैटिंग कर रहा हूं तो नॉर्मल है और बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है, दोनों बड़े, दोनों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना और कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक मूड पे चलते हैं दोनों और हंसते खेलते रहते हैं, एक कामनेस है, पीस है, कोई मतलब एक होता ना कि भाई जब पता कि है बंदा वो खड़ा है।
अब देखना है कि भारतीय बल्लेबाज टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर और इश सोडी के सामने कैसे खड़े होकर भारत की नैया पार लगाते हैं। उधर मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल महिला एकल वर्ग का खिताब छठी वरीयता हासिल थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन ने अपने नाम किया। छठी वरीयता हासिल इंतानोन ने फाइनल में चौथी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन को 21-9, 22-20 से हराया, जबकि पुरुष एकल वर्ग का खिताब चौथी वरीयता हासिल दक्षिण कोरिया के सोनवान हो ने जीता। फाइनल में उन्होंने तीसरी वरीयता हासिल चीन के चेन लॉन्ग को 21-17, 21-19 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी मैसेडोनिया के साथ सरकार की डील का विरोध कर रहे हैं। डील के तहत ग्रीस के उत्तर में स्थित पड़ोसी का नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया किया जा रहा है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगावा सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अपने विदेशी दौरों में कटौती कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता जिम्बाब्वे में शांति और स्थिरता लाना है। अफ्रीकी यूनियन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा टाल दिया है। यहां एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल विवादित राष्ट्रपति चुनावों का हल निकालने की कोशिशें कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कल कहा था कि चुनावों के परिणाम को लेकर संशय बरकरार है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने अफगान चरमपंथियों से निपटने के पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण दिन भर हर दिन की तरह समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार 7:30 PM। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।